हम सभी सुरेश भाई जी का इस सुंदर योग की यात्रा के लिए एक हाथ की ताली बजाकर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सुरेश भाई जी ने बहुत ही गहन और सुंदर अनुभूति हम सबको कराई। सुरेश भाई जी कर्नाटक शिमोगा से हैं, 40 वर्ष से ज्ञान में और 40 वर्षों से ही समर्पित। जैसे ही ज्ञान मिला वैसे ही अपने आप को समर्पित कर दिया। हुबली यल्लापुर में हमारा पहला रिट्रीट सेंटर बना था और वहां पे गवर्नमेंट और ब्रह्मा कुमारी के साथ कोलैबोरेशन में आंगनबाड़ी का कार्यक्रम, टीचर्स को इनवाइट किया जाता था, उसके आप प्रिंसिपल थे। तो बहुत ही महान विभूति, साथ ही कन्नड़ा साहित्य जो है, भक्ति जो है, उन सबको मिलाकर बहुत सुंदर आप कन्नड़ा में ज्ञान देते हैं जो सुनने वाले भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। गीता आपको कंठस्थ है, गीता के श्लोकों को आप धारा प्रवाह बोलते हैं। ऐसे बाबा के कितने सुंदर सुंदर रत्न हैं जिनका लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। अब इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच एक ऐसी दिव्य विभूति को जो बिल्कुल गुप्त रहते हैं लेकिन जिनके पास अनुभवों का ऐसा खजाना है जो हम सबको भी अनुभव से भरपूर और साथ ही उड़ाने वाला है। आदरणीय रमेश भाई जी, हम सब आदरणीय भ्राता जी का एक हाथ की ताली से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। भ्राता जी विशेष करके 1950 ईयर्स से बाबा के ज्ञान में हैं। मुंबई से आपने ज्ञान लिया और डॉक्टर निर्मला दीदी जी आपके टीचर रहे। ज्ञान लेने के बाद 47 ईयर्स से आप मधुबन में ही विभिन्न विभागों में प्रथमतः सेवा करते हुए, फिर लिटरेचर विभाग की जिम्मेवारी बाबा ने आपको प्रदान की, उसका ताज पहने हुए हम सबको लिटरेचर बाबा के ज्ञान रत्न हम तक पहुंचाने में भी, हमें प्रदान करने में भ्राता जी की अहम भूमिका रहती है। भ्राता जी के लिए मैं क्या कहूं, एक बार विशेष हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी से पूछा गया था कि आप इंटरव्यूज क्यों नहीं देते हैं, आप अखबारों में या रेडियो में इंटरव्यू नहीं देते हैं, अपने आप को आगे नहीं लाते हैं। तब उन्होंने एक बात कही थी कि देखो जो मंदिर होता है ना उसमें दो प्रकार की ईंटें लगती हैं, पत्थर लगते हैं, एक वो पत्थर जिसे सारी दुनिया देखती है और एक वो पत्थर जो जमीन के नीचे रहता है उसे कोई नहीं देखता लेकिन वही मंदिर को संबल प्रदान करता है। मैं वही पत्थर हूं, मैं वही ईंट हूं। तो आदरणीय भ्राता जी को देख करके भी हम सब यही महसूस करते हैं कि इस यज्ञ के नींव में आप हैं, आपकी सेवा, आपका त्याग, आपका बलिदान, भले ही आप कितने भी गुप्त रहें लेकिन वो हम सबको बहुत बहुत प्रेरित करता है। तो ऐसी महान विभूति हमारे बीच है, एक बार पुनः एक हाथ की ताली से हम आदरणीय भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और बाबा की याद में बैठकर फिर हम भ्राता जी के दादियों के साथ के सुंदर अंग संग के अनुभवों का लाभ लेंगे।
ओम शांति। मधुबन बाप दादा की तपस्या भूमि, चरित्र भूमि, यहां पर आकर के सभी भाई बहने तपस्या कर आत्म उन्नति का साधन प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो है हमारे पास में, बाबा ने दिया है, घर में भी कर सकते हैं, सेंटरों पर भी कर सकते हैं, लेकिन जो तपस्या भूमि का वायुमंडल है, प्रभाव है, वाइब्रेशन है, उसके अंदर आने से बहुत हमें हेल्प मिल जाती है। ऐसा महसूस होता है ना, ऐसा महसूस होता है ना। तो मुझ आत्मा को बरसों से रहने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मधुबन में रहने का, और उन आत्माओं के साथ रहने का जो सिंध हैदराबाद से दादा और दादियां आई हुई है, उनके अंग संग रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला, बहुत कुछ धारण करने को मिला, सब उनसे हमने सीखा। तो वर्तमान समय अगस्त मास है और बड़ी दादी का ये दिन है याद करने का। दीदी मनमोहिनी, दादी प्रकाशमणि, दादी गुलजार, दादी संतामणि, दादी मनोरिंद्रा, बहुत सारी दादियां, सब दादियों के साथ में। तो हम जो मधुबन में रहते हैं वो ऐसे नहीं रहते हैं जैसे घर के अंदर आप अपने बच्चों के साथ रहते हैं, माँ बाप, इस प्रकार से हम यहां रहते हैं। कभी भी दादियों के पास चले जाना, कभी भी उनके कमरे में चले जाना, कभी भी वो हमको बुलाती, सेवा देती है। हम दादी और दीदी को या बड़ी दादियां या दादा जो भी है उनको हम अपने बड़े समझते थे, लेकिन ये नहीं समझते थे कि ये ब्रह्मा कुमारी की हेड है, इसके सामने कैसे जाएं, कैसे बात करें, ये नहीं। अपनापन, चाहे जब जाना, चाहे जब वो भी हमें बुलावे बात करना। तो जो ईश्वरीय परिवार कहा जाता है, ये ईश्वरीय परिवार है, तो परिवार के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, जाने का आने का फलाना ये वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन स्नेह है, प्यार है, शिक्षा है, बात है, सावधानी है, ये सब चलता है। तो मधुबन में जब कुछ नहीं था, बरसों पहले की बात है, कुछ नहीं माना, कुछ भी नहीं था, उस समय हम रहते थे, फोर व्हीलर गाड़ी वो है ही नहीं मधुबन में, थी ही नहीं, उस समय की बात है, मतलब 40 साल पहले की बात। ऐसे समय पर क्या था मधुबन में, हार्ट सर्विस थी, साधन नहीं थे, बहुत सब हाथ से काम करना होता था, लकड़ी उठाना, चूल्हा जलाना, झाड़ू पोछा करना, सारा काम मतलब हाथ से था। तो ऐसे समय पर जब हम काम करते थे स्थूल, तो हमको दादी दीदी दादा और बाप दादा बहुत प्यार करते थे, स्थूल काम करने का है ना। तो बाप दादा से जब हमारी मुलाकात होती थी बाबा के कमरे में, तो बाबा बहुत प्यार से पास में बिठा करके बोलता था कि आप लोग कोई बंबई से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई बड़ा बड़ा शहर से आए हुए हैं, ऐसा तो नहीं लगता है कि हम आके क्या यहां फंस गए, स्थूल काम करना पड़ता है ना, लकड़ी जलाना, चूल्हा जलाना, ये सब करना, तो ऐसा तो मन में नहीं होता है, ये हमारा दिल ले रहा था बाबा कि इनके दिल में क्या है देखें। हमने कहा नहीं बाबा, बाबा से प्यार है, यज्ञ से प्यार है, कभी ऐसा सोच में नहीं आता है। तो हमारी बात सुन करके बाबा खुश होते थे। तो कहा बाबा ने कि अभी जो सेवा कर रहे हो ये आपका भाग्य बना रहे हो, आप आगे चल करके बहुत सेवादारी आएंगे और बहुत साधन आएंगे, आगे चल के बहुत सेवादारी आएंगे, बहुत साधन आएंगे, लेकिन जो साधना अभी कर रहे हो इस साधना छोड़ना नहीं, क्योंकि उस समय कोई प्रोग्राम नहीं, कोई बड़ी पार्टी नहीं, कुछ नहीं, बस स्थूल सेवा करो और बाबा के याद में रहो, यही था। तो बाबा ने खास अंडरलाइन की कि साधन बहुत आएंगे लेकिन साधना नहीं छोड़ना, ये पास में बिठा करके बाप दादा ने कहा। तो जहां एक लैंडलाइन फोन होता था यशु दादी के ऑफिस में, एक लैंडलाइन मधुबन के अंदर, और अगर दादी दीदी को बम्बई दिल्ली बात करनी होती थी तो पहले बुक करना पड़ता था टेलीफोन एक्सचेंज से, और जब लाइन मिलती थी फोन आता था तब हम दादी दीदी को बुला के लाते थे कि फोन आया है, ऐसा मधुबन था पहले। तो कोई गाड़ी नहीं थी, कोई साधन नहीं था, और बाबा ने कहा कि आगे चल करके बहुत साधन आएंगे, सेवाधारी आएंगे, और बाबा ऐसे टोली उठा करके मुख में दे देता हमको, हम बाबा को हाथ से ऐसे टोली खिलाते थे मुख में। बाबा बोला कि बाप और बच्चे का जो प्यार है वो आगे चल करके बहुत दूर का हो जाएगा। ये जितनी भी बातें बाबा ने हमको कही हमारी कोई समझ में नहीं आई। उसके बाद आज इतने साल हो गए, जो जो बाबा ने कहा वो सब सत्य हो गया, सत्य हो गया ना। एक गाड़ी नहीं थी, आज 1000 गाड़ी है। एक लैंडलाइन टेलीफोन था, आज सबके पास में टेलीफोन है, हाथ में सबके मोबाइल है। और बाबा को जो हम कमरे में मिलते थे, आज शांति उनमें कितनी दूर से मुलाकात होती है, कितने सेवाधारी आते हैं, हजारों की संख्या में सेवाधारी। तो बाबा ने एक एक शब्द जो कहा वो 100% अभी राइट हो गया। और ये भी कहा कि बच्चे साधना नहीं छोड़ना। तो हम लोग तो उस समय के दिनचर्या वाले हैं, जैसा माहौल में उस समय रहते थे ऐसे आज भी रहते हैं। भले ही आज बाबा का भंडारा भरपूर है, कोई कमी नहीं है, लेकिन ये यज्ञ से जो मिलता है कपड़ा, बस वही, जो यज्ञ से खाना मिलता है वही, पैसे की जरूरत नहीं। इसके लिए दादी हमेशा, जानकी दादी बोला करती थी, सफेद कपड़ा खीसा खाली, हम विश्व के मालिक, ये हाल है हमारा। कभी भी हमारे पास पैसे नहीं होंगे, पैसा क्या करना है, पैसा क्या करना है। तो बाबा ने ये यज्ञ रचा है, स्थूल जो सेवा करते हैं उसे खुशी मिलती है, भाग्य बनता है, और जिसके पास में धन है वो धन लगा करके देखो बाबा का कितना बड़ा यज्ञ बड़ा कर दिया। तो तन मन धन वचन कर्म सबकी सेवा है, और सब लोगों ने, सब आत्माओं ने बाबा को पहचाना और बाबा के यज्ञ के अंदर तन मन धन से सेवा किए, भाग्य बन गया। सभी को जाना है, चाहे योगी है चाहे वियोगी है या कोई भी हो, सबको छोड़ के जाना है, लेकिन कुछ हम करके जाएं, कुछ करके जाएं। तो ऐसे बाबा ने प्रेरणा दी और सब करके गए। आज जो भी जिन्होंने भी यज्ञ सेवाएं की है तन मन धन की, आज हजारों भाई बहने आते हैं और वो ज्ञान योग की पालना यहां लेते हैं, तो कितनी उनको ब्लेसिंग मिलती है। जिन्होंने कार्य में हाथ बटाया वो कितनी ब्लेसिंग मिलती है। तो ऐसे जो आनंद किशोर दादा थे, विश्व रतन दादा थे, चंद्रहास दादा थे, उनके साथ में रहना, यज्ञ की बातें सुनना, यज्ञ की व्यवस्था के बारे में जानना, ये सब बहुत अच्छा सौभाग्य मिला हमको। तो मम्मा बाबा के बाद में दादी और दीदी मम्मा बाबा की जगह पर पालना के लिए, यज्ञ चलाने के लिए। तो हम जब आए तो दादी और दीदी ने कहा कि जो भी आपको चाहिए, जो भी बात करना है, कुछ भी करना है, आप हमारे पास चले आओ कमरे में। कभी नहीं ये सोचना कि दादी स्नान कर रही होगी, कपड़ा पहन रही होगी, कैसे सोई होगी, ये सोचने का नहीं। आपको कुछ भी बात करना चले आना, तो हम जाते थे, दादी और दीदी दोनों के पास मैं गया हूं, ऐसे टाइम पर गया हूं कि पेटीकोट और ब्लाउज में बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो हमारी पालना जो है मां और बच्चे के माँ बाप हुई है। तो दादी जो है और दीदी जो है उनको हम पूछ पूछ करके सारा काम करते थे, बिना पूछे कुछ भी नहीं। और जो वो हमको आज्ञा करे कि ये सेवा करनी है तो हम कहते हाँ जी। ये पाठ पढ़ाया था कि दादी दीदी श्रीमत जो भी दे जो आज्ञा करे हाँ जी बोलना है, ना बोला माना भाग्य खत्म, हाँ बोला माना भाग्य बन गया। कार्य होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन उस समय आपको कौन सेवा दे रहा है, किसके थ्रू सेवा दे रहा है, बाबा की सेवा है और उसके लिए हम ना बोल दें तो भाग्य खत्म हो जाएगा। तो बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी और दीदी और गुलजार दादी, इन लोगों के साथ में मुझे बहुत रहने का चांस मिला। तो क्या हुआ, दादी की कुछ बात सुनाता हूं, बड़ी दादी की, प्रकाशमणि दादी की। प्रकाशमणि दादी को हम मधुबन में दादी कुमारका कहते थे। प्रकाशमणि दादी है वो ऑफिशियली नाम है, बाकी घरेलू जो नाम है वो दादी कुमारका। तो दादी और दीदी के साथ में इतना गहरा संबंध था कि वो जो कहे वो करने के लिए हम तैयार है, रात हो दिन हो कुछ भी हो। तो दादी की ये शिक्षा थी हमको कि हम यहां से यज्ञ में रहते हैं कैसे रहना चाहिए, हमको सोना कैसे चाहिए, कमरे में कैसे रहना चाहिए, खाना पीना कैसे करना है, दिनचर्या का पालन कैसे करना है, ये सब बातों की शिक्षा बैठ करके देती थी। क्यों कि दिनचर्या किसने दी है, बाबा ने दी है। बाबा की दिनचर्या को पालन करना मन श्रीमत को पालन करना। तो उस श्रीमत को पालन करते 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 जीवन बन जाता है, जिसको कहते हैं ना योगी जीवन। योगी जीवन का मतलब यह नहीं कि ऐसे बैठ करके और लाल बत्ती को देखो वो योगी जीवन है, नहीं, लाइफ जीवन ही योगी हो। तो उन दादियों के साथ में हमने रह करके देखा कि वो लोक संग्रह अर्थ सिखाने के अर्थ, या जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, तो इतनी उम्र होते हुए भी रात को 4 बजे सुबह उठ करके संदल पर बैठ करके और हमको योग कराती थी दादी और दीदी दोनों। तो उनको योग करने की जरूरत नहीं है, योगी लाइफ है उनकी, लेकिन हम कैसे सीखेंगे। वो सिखाने के लिए सुबह उठ करके इतना उम्र होते हुए भी और वो योग में बैठती थी। तो हमारा जीवन ऐसा बनना चाहिए, कहने के लिए नहीं, योगी जीवन प्रैक्टिकल में योगी जीवन होना चाहिए। तो ये हमारा योगी जीवन कैसे बनेगा, दिनचर्या को फॉलो करने से। हमारी दिनचर्या ऐसी हो कि उसमें योग अलग करने की जरूरत नहीं है, योग युक्त तो हमारी दिनचर्या हो। तो ऐसी शिक्षाएं दी तो दादी और दीदी हमारी मधुबन में पालना करती थी। तो दादी एक दिन मेरे पास में आई, मेरे डिपार्टमेंट में, तो 10, 10:30, 11 बजे छोटे छोटे डिपार्टमेंट होते थे उस समय पांडव भवन में, वो सब अपने डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, कमरे में कोई नहीं होता है। मेरे को बोला कि तुम लोग कहां रहते हो, वहां पर ज्यादा करके भाई नहीं बोलते थे, गोप, गोप कहां रहते हैं, मेरे कुछ दिखाओ, चलो मेरे साथ। प्रकाशमणि दादी, दादी के साथ गया, दादी का हाथ पकड़ के ले गया। तो हम लोग लाइट हाउस में रहते थे, उसके ऊपर छत थी, उसके नीचे भी कमरे थे, मैं दादी को ले गया। तो यहां आपको ये देखना और ये सुनना है और ये समझना है कि एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेम, शिक्षाएं कैसे किस प्रकार से उन्होंने दी हमको, ये समझते जाना। इसके अंदर ले गया ऊपर कमरे में ले गया, एक कमरे में हम 5 भाई लोग रहते थे, एक एक कमरे में पांच पांच लोग रहते थे। तो हमको एक कमरे के लिए यज्ञ से बेडशीट मिलती थी, कपड़े मिलते थे, जो साधन चाहिए वो सब मिलते थे। अभी उसका मेंटेनेंस करना हमारा काम है। तो पूछती थी, इस बेड पर कौन सोता है, इस बेड पर कौन सोता है, इस बेड, पांचों बेड का पूछे न माना, पांच कमरे थे, पांचों कमरे में सबको पूछे, सबका, इसमें कौन सोता है, इसमें कौन सोता, क्योंकि उसने देखा अब दादी ने कि किस प्रकार से बेडशीट लगी हुई है, किस प्रकार से पिलो तकिया पड़ा हुआ है, किस प्रकार से कपड़े कहाँ लटकाए हुए हैं, जूते चप्पल कहाँ पड़े हुए हैं, किस प्रकार से रहते हैं, स्वच्छता से रहते हैं या कैसे रहते हैं, ये सब देखा उसने, पूरा सब मैंने दिखा, सब देखा। तो सारा देख करके और फिर मेरे को बोली कि अभी मेरे को टेरेस पर ले चलो। उसके ऊपर टेरेस पर ले गया। तो यहां आप ये देखो कि उनकी शिक्षा और उनका प्यार हम छोटी छोटी आत्माओं के लिए कितना था। ऊपर ले गया, इतनी बड़ी टेरेस है, कभी दादी को यहां बुला करके पिकनिक किया? प्रकाशमणि दादी बोलती मेरे को, इतनी बड़ी टेरेस है, कभी दादी को बुलाया, पिकनिक किया कभी? क्या जवाब दूं बताऊं मैं? मैंने कहा दादी मैं प्रोग्राम बनाऊंगा। फिर नीचे आया, नीचे आकर के भोली दादी के पास गया। भोली दादी को मैंने बोला, दादी आज दादी हमारे पास में आई थी देखने के लिए, और सारा देख के गई, और दादी ने बोला है कि यहां पिकनिक नहीं रखा तुमने, पिकनिक रखो। तो दादी हम कल शाम को पिकनिक रखेंगे, तो आप पिकनिक कुछ बनाना, दादी को हम पिकनिक करेंगे। तो दादी सामने से हमें बोल करके ही सिखा रही है कि बड़ों को कैसे सम्मान करना चाहिए, कैसे स्वागत करना चाहिए, उनका क्या करना चाहिए। फिर मैंने दादी को निमंत्रण दिया, रतन मुनि दादी को निमंत्रण दिया, निर्वेर भाई को निमंत्रण दिया, मोहिनी बहन को निमंत्रण दिया, मधुबन निवासियों को निमंत्रण दिया कि भाई आज शाम को दादी आएगी और प्रोग्राम में सभी आना, पिकनिक है, सिखाती है कैसे अरेंज करने का, कैसे प्रोग्राम करने का। दादी आई, दादी को मैंने हार पहनाया, बिंदी लगाया, गुलदस्ता दिया, हाथ पकड़ के ले गया, सोफे पर बिठाया, और दादी ने फिर मुझे सौगात दिया। सिखा रही है प्रैक्टिकल, नहीं तो घर में कोई स्वागत करता है क्या? घर में किसका कौन स्वागत करता है? प्रैक्टिकल में ये सिखा रही बड़ी दादी, प्रकाशमणि दादी। फिर ये हो गया, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई दादी को, सब लोगों को खुशी हुई, पिकनिक की। फिर नीचे गए, रात्रि का क्लास है, देख करके गई, पिकनिक दूसरे दिन थे, देख करके गई, रात्रि का क्लास है। बोर्ड पर लिखवा दिया कि आज दादी का क्लास है रात को, रात को तो सब रोज क्लास होता है, क्लास रोज होता है, लेकिन जब कोई बात कहनी होती दादी दीदी को मंच पर बैठ करके, तो दादी अपना नाम लिखवाती थी। तो बोलो लिखो बोर्ड पर कि आज रात्रि का क्लास दादी का है। तो सब मधुबन निवासियों के अंदर वो बात थोड़ी होती कि आज क्या बात है, पता नहीं दादी का क्लास है। तो दादी क्लास में आई और इतना डिसिप्लिन था, इतनी व्यवस्था थी कि रात को रात्रि क्लास की घंटी लगती थी, जैसे स्कूल में घंटी लगती है ना, टिन 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 टिन, ऐसे घंटी लगती थी। तो घंटी जैसे लगी, ऐसे बड़ी दीदी पहले क्लास में आ जाती थी, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख करके और करेंगे। हिस्ट्री हॉल में हम सब पट में बैठते थे, कुर्सियां नहीं थी, एक बेत की कुर्सी बड़ी दीदी के लिए होती थी, जो दीदी बैठती थी, दादी क्लास में मुरली सुनाती थी या क्लास कराती थी, तो वहां हम लोग सब नीचे पट में बैठते थे, कोई कुर्सी नहीं थी। तो दादी बोलती है दीदी को, दीदी आज मैं गई थी गोपों के पास में, उधर कहां रहते हैं कैसे रहते हैं देख के आई। ये गोप देवता बनने वाले हैं, देवता बनने वाले ऐसे, ये देवता बनने वाले हैं। देवताओं के कैसे स्वभाव संस्कार होते हैं, कैसी स्वच्छता होती है, कैसी पवित्रता होती है, कैसा होता है, मैं देख करके आई दीदी, सब देख के आई मैं। वो लेना दिया, दादी ने कहा कि ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम है और यहां आप लोग रहते हो और इतना डिसिप्लिन से यहां रहना चाहिए कि आधी रात को इमरजेंसी में दादी कभी भी आप लोगों को बुलाएगी तो ऐसा नहीं कि कच्चे गंजी में सोए हो और कपड़ा पहन करके आए तो टाइम लग जावे। यहां तक की शिक्षा। तो क्या करना है, पैजामा पहन करके सोना है, कच्चा पहन करके नहीं। प्रकाशमणि दादी शिक्षा दे रही है। और मैं कभी भी इमरजेंसी में बुलाऊंगी और मैं ट्रायल करूंगा, देखूंगी कि कैसे आप लोग रहते हो और कैसे आते हो। तो एक दिन क्या किया, रात को 1:30 बजे घंटी बजा दिया, शांति स्तंभ के सामने वहां घंटी होती थी इमरजेंसी, घंटी बजा दिया रात को। दादी ने पहरे वाले को बोला घंटी बजाओ, घंटी जैसे सुनी वैसे सब गोप लोग भाई लोग अपने अपने कमरे से निकल करके आए। दादी क्या बात, मैं परीक्षा ले रही हूं कि आप कितने जागृत अवस्था में हैं कि नहीं, कैसे हो, कितनी टाइम लगता है, घंटी इमरजेंसी बेल की बजी, घंटी बजी मन तुरंत वहां आते हो या टाइम लगता है। ये सारी बातें प्रैक्टिकल में परीक्षा भी ली, शिक्षा भी दी, सिखाया भी। तो रक्षाबंधन का टाइम आता है, गुलजार दादी, बड़ी दादी, दीदी ये हमको राखी बांधती थी, दादियां राखी बांधती थी। तो मैंने एक दिन, हर साल एक साल नहीं हर साल, तो मैंने एक दिन बड़ी दादी को बोला कि दादी बहनें तो भाइयों को राखी बांधती है, ये तो रसम है। हम भी बांधते थे दादी को, तो मैंने दादी को राखी बांधा। मैंने कहा भाई फिर राखी बांधते हैं बहनों को, ये इसका क्या मतलब है। तो ऐसा हाथ पकड़ा, प्यार है प्यार है प्यार, मतलब कुछ नहीं है, प्यार है। तो जो भी हमारा यज्ञ के अंदर हम कर रहे हैं, तन से मन से धन से समय दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो बाबा के लिए प्यार है, इस परिवार के लिए प्यार है, इस यज्ञ के लिए प्यार है, उसके कारण हम कर रहे हैं। हम इसके लिए नहीं कर रहे कि हम भविष्य में राजा बन जाएंगे, इसके लिए कर रहे हैं नहीं, प्यार में कर रहे हैं। तो प्यार में हम अपनी हड्डी हड्डी इस यज्ञ के अंदर दे रहे हैं। तो ऐसा हमारा प्यार यज्ञ से होना चाहिए, तन मन धन वचन कर्म। ये जीवन कितना है, अभी थोड़े समय का है। तो जितनी दादियां आई, जितने दादा थे, जिनकी पालना मिली, जिनके साथ बैठे, जिनके साथ खाया पिया, वो कहां है, सब चले गए, है ही नहीं। उन्होंने अपनी सेवा दी, शिक्षा दी, धारणाएं कराई और वो चले गए। तो क्या हम बैठे रहेंगे, हम बैठे रहेंगे, हमें भी जाना है। तो जो कार्य उन्होंने करके दिखाया और करके गए हमारे सामने, वो हमें भी करना है, फॉलो करना है उनको। तन मन धन से इस यज्ञ के अंदर करो, अपने हाथ से करो। आज जिसने भी किया है वो आज उसका लाभ ले रहे हैं, उनकी दुआएं मिल रही है ना उनको, हजारों भाई बहने आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कर रहे हैं ना। तो एक भाई जो था सब्जी लाने वाला पांडव भवन में, तो दादी को पूछ के जाता था। हम सब लोग कहीं भी जाना है तो पूछ के जाना है, नक्की लेक पर भी जाना है तो पूछ के जाना है, पहरे वाले को बता के जाओ कि हम नक्की लेक पर जा रहे हैं, ये शिक्षा थी हमारी। तो उसका सब्जी लाने का ड्यूटी था, माउंट आबू बाजार में से सब्जी लाना। कौन सी सब्जी लाना, जो सस्ते से सस्ती सब्जी मिलती वो लाना। तो सस्ते से सस्ती सब्जी मिलती थी लौकी, समझते हैं ना, लौकी, लौकी मिलती थी, कितनी सस्ती मिलती थी, 75 पैसा केजी। यज्ञ में कमी थी इसलिए इकोनॉमी से चलना पड़ता था, सारा संभाल करके सब कुछ करना पड़ता था। तो वो महंगी हो गई कुछ दिन के बाद में, कितनी महंगी हो गई, 1 रुपये किलो। उसने आकर के दादी को बोला, दादी सब्जी महंगी हो गई। बोले क्या, 1 रुपये किलो। दादी ऐसे करती, बाबा बाबा महंगी हो गई सब्जी। तो दादी दीदी ने मीटिंग किया, सब्जी महंगी हो गई, कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या मीटिंग किया कि सब्जी हम 2 बार देते हैं, हम थाली लेके ऐसे जाते थे और पुरानी दादियां बैठती थी डेगड़े पर, चावल रोटी सब्जी और दाल देती थी दाल, तो एक ही बार सब्जी देना है, अभी महंगी हो गई ना सब्जी, एक ही बार देना है। उनकी मीटिंग हो गई आपस में, और जो पिरसने वाली थी उनको उन्होंने बता दिया कि इस प्रकार से आपको देना है। तो आप जानते हैं, छोटा परिवार था मधुबन में, खाना बहुत स्वादिष्ट बनता था, लकड़ी पर चूल्हे पर खाना बनता था, तो वो बहुत अच्छी लगती थी सब्जी। तो पहले तो हम 2 बार लेते थे, लेकिन अभी रिस्ट्रिक्शन हो गया है उनकी मीटिंग के अंदर, वो हमको पता नहीं है। तो मैं वापस खाई सब्जी, फिर लेने के लिए गया, तो जो सब्जी देने वाली दादी थी वो मेरे को दृष्टि देने लगी। तो मेरे को, मैंने कहा क्या हुआ दादी, तो कहने लगी आपको पता नहीं है। मैंने कहा नहीं दादी मुझे पता नहीं, सब्जी एक ही बार मिलती है। तो आया है अभी, तो एक जो स्पून है ना अपना खाने का, वो इस एक स्पून 2 दाने उसमें मेरी थाली में डाल दिए, एक ही बार सब्जी मिलती है। वो लेके गया, नीचे बैठ के खा लिया, टेबल कुर्सी तो था ही नहीं उस समय, नीचे बैठ के खा लेते थे। तो उस दादी ने, वो दादी कौन थी मालूम है जो देने वाली सब्जी, वो मम्मा की ब्राह्मणी थी जमुना दादी। तो उसने जाकर के दीदी को बोल दिया कि दीदी वो रमेश गोप है ना, वो दोबारा सब्जी लेने आया था। दीदी को बोल दिया, बड़ी दीदी को, और दीदी सारा कंट्रोलर थी, सारा भंडारा का ध्यान रखने, बोले उसको बुलाओ अभी, वहां कोई भी फैसला है ना बाद में होगा ऐसा नहीं, उसी वक्त फैसला करने का होता है कोई भी बात का हो। दीदी दादी बुलाओ उसको अभी, एक पहरे वाला रहता था दीदी के कमरे के बाहर, उसको बुला के लाओ, क्योंकि फोन मोबाइल तो होता नहीं था उस समय, जाके बुला के लाना है। बोली चलो दीदी बुला रहे, चलो, क्योंकि हम तो फ्री थे ना, दीदी दादी के पास में जाने का कोई हमको वो नहीं था कि क्यों बुला रहे क्या बात है, बैठो इधर बाजू में बिठाया मेरे को दीदी ने अपने कमरे में। आज तुमने कुछ भूल की है? मैंने कहा मैंने तो कोई भूल नहीं की, कोई भूल नहीं की। अरे तुमने दोबारा सब्जी मांगा ना, तो मैंने कहा मेरे को सब्जी चाहिए तो वो मैं लेने गया, तो कोई भूल थोड़ी है। तुमको मालूम है अभी दीदी दादी ने सब्जी महंगी हो गई ना, तो दीदी दादी ने ये प्रोग्राम बनाया है कि एक बार सब्जी लेना है, अभी दोबारा चाहिए ना तो दाल लेना, सब्जी एक बार मिलेगी। ऐसी शिक्षाएं, ऐसी व्यवस्था, ऐसा कंट्रोल, मम्मा बाबा के टाइम पर सरेंडर, भाई बहने ऐसे समय के अंदर चले गए, इतना कंट्रोल, कितना कंट्रोल है, इतना कंट्रोल। ये महीने में एक बार बाल कटाने के लिए जाते थे, अभी तो बाबा ने अपने घर में यह सब साधन कर दिए हैं, बाजार में जाते थे बाल कटाने के लिए, तो मैं गया, दीदी और ईसु दादी बैठी रहती, दीदी बैठी रहती, मैंने कहा ईसु दादी 1 रुपया दे दो मेरे को, बाल कटाने जाना है नक्की लेक पर नाई की दुकान में। तो ईसु दादी बोलते दीदी ये 1 रुपया मांग रहा है। बोले क्यों? बाल कटाने जाना। तो दीदी ने कहा कि पीछे घूम के दिखाओ, दीदी ने मेरे को कहा पीछे घूम के दिखाओ, पीछे घूम के दिखाया, बोले कि अभी 8-10 दिन के बाद में कटाना, अभी नहीं। प्यार भी इतना, शिक्षा भी इतनी, व्यवस्था भी इतनी, और प्यार में इतना काम भी हमसे लेती थी, सेवा भी कराती थी। एक दिन बुलाया, बोले कि उसको बुलाओ। मैं गया, ऑफिस में गया, तो उस समय क्या था कि किसी के कपड़े हैं, किसी की चीजें हैं, किसी की घड़ी है, किसी की कुछ है, तो बड़े बड़े घर वाले हैं ना, वो आश्रम में दे जाते थे और वहां का चीज हमारे मधुबन में आ जाती थी और मधुबन में वो हमको मिलती थी। कमी थी यज्ञ में, वो हमें मिलती थी। तो दीदी ने कहा कि तुम्हारे पास घड़ी है? मैंने कही नहीं। अच्छा, तुमको घड़ी चाहिए? मैं कैसे कहूं कि मुझे चाहिए, हमको तो शिक्षा दी हुई सारी, मैं कैसे कहूं कि मुझे घड़ी चाहिए। नहीं दीदी, अगर आप देंगी तो पहनूंगा। मैंने कहा दीदी आप देंगी तो पहनूंगा। अच्छा इसको वो घड़ी दो, इसको हाँ यहां बांधो, जब देखना है ना टाइम देखना, उसके बाद में ऐसे कर लेना, कोई देखे नहीं कि तुम्हारे पास घड़ी है। दीदी बोल रही है कि कोई देखे नहीं कि तुम्हारे पास में घड़ी है, नहीं तो तुम्हारे पास में देखेगा ना तो दूसरा भाई भी आएगा, बोले कि उसको घड़ी देना, मेरे को भी दो। ये शिक्षा है, कितनी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन शिक्षा है, देखो कितनी है। तो ऐसे दादी और दीदी की इतनी शिक्षाएं पास में बिठा के इतनी पालना है। बड़ी दादी मुरली सुनाती है और दीदी मुरली को सुनकर के झूमती रहती थी, बाबा की मुरली ऐसे दादी सुनाती थी। और दीदी बोलती थी कि दादी जैसी मुरली कोई नहीं सुना सकता, दादी जैसी मुरली कोई नहीं सुना सकता, और सारे पॉइंट नोट करके और फिर लेटर लिखती थी सेंटरों पर दीदी। तो दादी मुरली सुनाती थी तो दादी को बड़ा उमंग उल्लास होता था, पिकनिक कराना, बाहर घुमाने के लिए ले जाना इनको, क्योंकि हम लोग हार्ट सर्विस करते थे ना, तो हमारी पालना बहुत करती थी, वो प्यार करती थी। तो मुरली सुनाते सुनाते बोलती है प्रकाशमणि दादी, भंडारे में सब जगह पर माइक लगे हुए हैं, छोटा भंडारा होता था उसमें, अभी भंडारा है वो नहीं, छोटा भंडारा पहले। बोली सुन रही हो, अभी मुरली के बाद में हम पिकनिक करने के लिए जाएंगे तो तुम तैयारी करो। बोली दादी ने अपनी टीम को बुलाया, दादी पिकनिक करने के लिए जाएगी, टीम वालों को बुलाया, सब भंडारे में काम करने वाले को, क्या तैयारी किया? एक टोपी है के अंदर बेसन घोला, स्टोव पंप लगाने वाला होता है ना, मालूम होगा आपको, केरोसिन का स्टोव होता है वो रखा, एक कढ़ाई रखी, वही सब चीजें तैयारी की, तेल रखा तैयारी की, दरी रखा, ये सब रखा। दादी मुरली सुन रहा के नीचे आई, हमारे पास में जाने के लिए कोई साधन नहीं, एक पुराना ट्रक था, उस ट्रक के अंदर दरी बिछाई, दरी रखी, उस ट्रक में हम बैठ गए और फ्रंट सीट में ड्राइवर के साथ में दादी बैठ गई, प्रकाशमणि दादी ट्रक में बैठ गई और सारा सामान रख करके लेके गए और एक जंगल में जाकर के ट्रक खड़ा किया, सब उतरे, एक झाड़ के नीचे स्टोव चालू किया और पकौड़ा बनाना चालू किया, और दादी के साथ में खेल पाल हम करते थे, क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, हंसते थे, बहलते थे दादी के साथ में, पकौड़ा वकोड़ा खाया, पिकनिक किया, हंसे बहले। फिर जाना है तो मैं दादी के पास गया, वहीं मैदान में, वो जगह अपनी नहीं थी। मैंने दादी कहा दादी ये जगह अपनी हो जाए तो हमारे भाई बहन यहां आएंगे, पिकनिक करेंगे, योग करेंगे। तो दादी मेरे को दृष्टि देने लगी ऐसे, तो मैं क्या, वो जो दृष्टि दे रही थी ना, तो मैं क्या फील कर रहा था कि खाने के लिए है ही नहीं और जमीन लेने की बात कर रहा है, मेरे को ऐसे फीलिंग आ रही थी। तो दादी ने दृष्टि दे करके और कहा कि देखेंगे, बाबा की इच्छा होगी तो ले लेंगे। तो दादी ने उस बात को अपनी बुद्धि में रखा और जहां हमने वो पिकनिक की थी उसके आजू बाजू में गांव है, गुरु शिखर के पास में वहां गांव है, तो उस गांव से हमारे पास में पांडव भवन में दूध आता था, तो दूध लेने वाले भाई को दादी ने बुलाया कि जो तुम्हारे वहां गांव से दूध आता है वो दूध वालों को पूछो वो जमीन जो पड़ी है ना वो किसकी है और हमको लेना है, आप वो जमीन दोगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ हम दे देंगे, गाय चरने की उबड़ खाबड़ जमीन ऐसे वैसे थी सब, वहां ही हम पिकनिक करके आए थे वो थी, उसने देंगे। तो दादी ने कहा कि चलो उससे बात करो, दूध वाले भाई को कहा उससे बात करो, सौदा करो उससे। वो जमीन ली मेरे नाम पर ली और भाइयों के नाम पर ली, अलग अलग नाम की वो जमीन थी, अलग अलग भाइयों के नाम पर वो जमीन ली और वो ले करके, और वो आज कौन सी जमीन है मालूम है? पीस पार्क, वो पीस पार्क जमीन है। तो दादियां, सिर्फ हम छोटे हैं और दादियां बड़ी है, वो हमारा कहना मानेगी नहीं मानेगी ये बात नहीं, लेकिन उनके अंदर इतनी विशेषता थी कि छोटे से छोटी बहन हो भाई हो कोई उसकी बात को सुनती थी और करती थी। तो वो पीस पार्क आज लिया है जमीन, आज देखो कितना डेवलपमेंट है। तो माउंट आबू के अंदर साइट सीन में जो लोग आते हैं इतने, वो साइट सीन माउंट आबू का कुछ नहीं है, एक दिलवाड़ा मंदिर है, अचलगढ़ है, गुरु शिखर है, सनसेट पॉइंट है। अब साइट सीन में क्या है? ब्रह्मा कुमारी का ओम शांति भवन देखो, ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान सरोवर देखो, ब्रह्मा कुमारी का पीस पार्क देखो, ब्रह्मा कुमारी का म्यूजियम देखो, ये देखने की चीज है देखो साइट सीन में। तो कई बार हम जब ओम शांति भवन बनाया उसको हम गाइड करते थे, तो कई बार वो गाइड को वो जो पैसेंजर आते थे लोग, वो गाइड को बोलते अरे तुमने हमारा टाइम बेकार खराब किया, तो उधर दिखा करके यहां पहले ले जाता तो कम से कम हमको कुछ प्राप्ति होती। तो ऐसे दादी दीदी ने हमारे जीवन के अंदर प्रैक्टिकल कराने का, साथ में प्रैक्टिकल। अब ये दादी के साथ में तो एक बार किया, दीदी को भी निमंत्रण देना है, तो दीदी के पास मैं गया। मेरे साथ में रहने वाले बहुत लोग थे लेकिन ये काम मुझे करते कराते थे मेरे से, वो कि तुम ही करो जाओ दादी दीदी के पास में। दीदी के पास गए, दीदी आपको हमारे पास में आना है, लाइट हाउस में आना है, गोपों के पास में आना है। तो दीदी खुश हुई, बोले चलो ठीक है आऊंगी। दीदी का बिंदी लगाया, स्वागत किया, हार फूल से स्वागत किया, हमारे वरंडा है इतना चौड़ा, वहां पर दीदी के लिए झूला लगाया हमने, दीदी को झूला पर बिठाया, झूला झुलाया और सब दिखाया, दीदी खुश हो गई थी। तो अर्जुन दादा, आपको मालूम है अर्जुन, अर्जुन दादा था यज्ञ में, किसी भाई भाई बहनों ने देखा है अर्जुन दादा? अर्जुन दादा हमारे साथ में रहता था लाइट हाउस में, वो सिंध हैदराबाद का था अर्जुन दादा हम बोलते थे उसको। तो उसको हमने सिखाया था, वो जरा माइंड का दौरा कम था तो उससे हम हंसते बेलते रहते थे। उसको सिखाया था कि दीदी आएगी ना, क्योंकि उस समय हमारे कमरे में या कहीं पर भी मधुबन में सीलिंग फैन नहीं था, क्योंकि इतना अच्छा वेदर था उस समय, सीलिंग फैन नहीं था, था ही नहीं कहीं, सिर्फ छोटे हाल के अंदर दो फैन लगे हुए थे, हिस्ट्री हाल में दो फैन लगे हुए थे। तो उसको सिखाया हमने कि जब दीदी आएगी ना तो दीदी का हाथ पकड़ के तुम अपने कमरे में ले जाना और गीत गाना, दीदी जी एक पंखा लगवा दो बड़ी गर्मी होती है, और दीदी को हाथ पकड़ करके अपने कमरे में डांस करने लगा। तो दीदी ने कहा कि अच्छा भाई इलेक्ट्रिशियन कौन है? हाँ इसके यहां पर पंखा लगा देना है। तो हम लोगों ने कहा कि दीदी उसको एक को आओ, उसने गीत गाया पंखा लगा दे, हमारे तो सबको लगवा दो ना। अच्छा भाई सबके लगा देना। तो इस प्रकार से हंसते गाते खेलते योग करते और सब प्यार प्रेम करते, और देखो कितना समय निकल गया। तो अब क्या करना है, जीवन उससे बन जाता है, वो लाइफ बन गई। अभी माया वाया कुछ आने वाली नहीं है, क्योंकि लाइफ बनने के बाद में माया थोड़ी आती, तो जब बनती होती है उस समय आती माया। तो ऐसे दादी दीदी के संग में रह करके और बहुत 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 खुशी हुई हमको, और बहुत हमारा जीवन बन गया, और हम उस पल को याद करके हमारा हम तो दिल हमारा भर जाता है। एक बार क्या हुआ, मैं दादी जब यहां रहती थी तो दादी के पास में भी जाता था, प्रकाशमणि दादी के पास में, जानकी दादी के पास में भी, गुलजार दादी के पास में, रोज एक दिन नहीं रोज जाने का। तो गुलजार दादी के पास में गया, यहां शांतिवन कॉटेज में रोज जाता था शाम को, या कभी भी जाता था। तो बोलती थी शाम को योग कहाँ करते हो? मैंने कहा दादी हम जहां रहते ना वहां हमारा योग का कमरा बनाया हुआ, वहां मैं बैठता हूं 7 से 7:30, आधा घंटा कंटिन्यू हमको वहां बैठ के योग करना है। तो मेरा कमरा बनाया है वहां पर, हमारा बाबा का कमरा भी है वहां बैठ कर। तो गुलजार दादी ने मुझे को कहा कि 7 से 7:30 यहां मेरे पास में आके योग करना है। मेरे को कहा कि 7 से 7:30 मेरे पास में आके योग करना है, और तुम्हारे साथ में कौन है? मैंने कहा कि मेरे साथ में वल्लभ भाई है, राजू भाई, उनको भी ले आना साथ में। उनको मैंने बोला भाई दादी ने आज कहा है कि यहां मेरे पास में आके योग करना है। बोले कि तो बहुत अच्छी बात, दादी बुला रही। तो रोज हम योग करने के लिए दादी के एक कॉटेज में जाते थे। दादी ऐसे बैठती थी, सामने हॉल में बाबा का चित्र होता था, इधर मैं, इधर राजू भाई, वल्लभ भाई, और दो चार, ज्यादा नहीं, दो चार लोग बैठते थे। आधा घंटा डेड साइलेंस, दादी के साथ योग कर रहे हैं, पावरफुल आत्मा के साथ में योग कर रहे हैं, वाइब्रेशन खत्म, सब दूसरे वाइब्रेशन सारे खत्म। योग पूरा हुआ, रिकॉर्ड बजा, हम कुर्सी घुमा देते थे, दादी के सामने हो जाते थे, ऐसे आमने सामने हो जाते थे। दादी दृष्टि देती थी, मेरे को बोली ये प्रोग्राम ठीक है ना? बात दादी ने प्रोग्राम दिया ना कि 7 से 7:30 यहां योग करना, बोले ये प्रोग्राम ठीक है ना? जी दादी ठीक है। मैंने तुमको क्यों बोला? क्योंकि तुम वहां लिटरेचर डिपार्टमेंट के ऊपर तुम्हारा रूम है, तुम्हारे वहां पर वाइब्रेशन है, लेन देन के वाइब्रेशन है, कोई बहने आएंगे, रमेश भाई ये पैसा लेना है, देना है, ये करना है, लिस्ट है, यही सारा वायुमंडल है, इसलिए मैंने तुमको बोला कि तुम यहां आके, अच्छा रहा ना यहां? कितनी अच्छी बात है, देखो कितनी अच्छी शिक्षा है और कितनी अच्छी पालना है, कितना सिंपल है। तो इसी प्रकार से उन लोगों के साथ में ले करके सहज से सहज बातें, सिंपल से सिंपल बातें शिक्षा दी। तो 15-25 तारीख को दादी का दिन होता है, तो एक 3-4-5 साल हो गया होगा, ज्यादा हो गया होगा, तो मद्रास की बहन आई और दादी गुलजार को बोली दादी हम प्रोग्राम रखेंगे, हॉल लेंगे और वीआईपी का प्रोग्राम रखेंगे, आपको आना है, पक्का हो गया, तिथि तारीख सब नोट करा दिया, सब पक्का हो गया। 25 तारीख को दादी के प्रोग्राम के बाद में 30 तारीख तक का कोई डेट दिया था वहां जाने का, मद्रास जाने का, सब पक्का हो गया। अब दादी की पधरावनी हुई 25 तारीख को गुलजार दादी के तन में, और सब लोग भाकी झाकी करने लगे और दादी को इन्फेक्शन हो गया, गुलजार दादी को इन्फेक्शन हो गया। तो इसने अपना नीलू बहन ने उस बहन को फोन कर दिया कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम नहीं आएंगे। अरे उसने कार्ड छपा दिए, सबको बांट दिए, हॉल बुक कर लिया, एयर कंडीशन हॉल बुक कर लिया, सबकी सेवा कर ली कि हमारी बड़ी दादी आने वाली, ब्रह्मा कुमारी की हेड आने वाली, चीफ आने वाली, वो सब कुछ हो गया, प्रचार हो गया। वो उसने कहा कि इसने तो यहां से बोल दिया कि दादी नहीं आएगी, दादी की तबीयत ठीक नहीं है। बेचारी घबरा गई, वो तो सब भाई बहने घबरा गए और भट्टी करने लगे कि हे बाबा हमारी लाज रखो, हमने ये सारा प्रोग्राम रखा है, भट्टी करने लगे सब। तो एक दिन दो दिन के बाद में उस बहन ने मेरे को फोन किया, निर्वर भाई को फोन नहीं किया, जानकी दादी को फोन नहीं किया, मुझे फोन किया वो बहन ने, रमेश भाई हमने सब प्रोग्राम रखा है, एयर कंडीशन हॉल बुक किया है, वीआईपी को कार्ड बांट दिए हैं, नीलू बहन ने कहा कि हम नहीं आएंगे, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ करो आप। फिर मैं दादी के पास गया, दिन में 10 बजे गुलजार दादी के पास गया फोन में। मैंने कहा दादी वो बीना बहन का फोन था, उसने ऐसे ऐसे वीआईपी को कार्ड बांटे हुए हैं और हॉल भी बुक कर लिया है, तो बेचारी वो तो घबरा रही है, क्या करना है। मैंने जो मैं आपको बता रहा हूं ऐसा मैंने दादी को बताया। तो दादी ने क्या कहा मालूम है? बाबा को पूछती हूं। तो मैं तो दादी को सुना करके अपने डिपार्टमेंट में आ गया। तो शाम को 5 बजे नीलू बहन का मुझे फोन आया कि बाबा ने कहा है कि बच्चे जा सकते हो। तो मैंने कहा कब जाना है? बोले अभी जाना है, अभी तो शांतिवन से अभी जाना है। तो गए, मैं भी गया दादी के साथ में, दादी और नीलू बहन और मैं गाड़ी में बैठे अहमदाबाद जा रहे हैं। तो मैंने दादी को पूछा, दादी आपने बाबा को क्या बोला? बोली मैंने कहा बाबा को, बाबा ऐसे ऐसे प्रोग्राम मद्रास में रखा हुआ है लेकिन तबीयत खराब है, क्या करें, जाओ बच्ची, सेवा के लिए तबियत की बात नहीं है कुछ, सेवा पहले, बाबा बैठा है ना, जाओ सेवा के लिए। गए, ये दादी ने मेरे को सुनाया, कार में बैठे थे ना साथ में, गए वहां पर, सेवा कर लिया, वीआईपी से मिला, सब कुछ कर लिया, और दूसरे दिन हमारा सुबह 9 बजे का फ्लाइट है बॉम्बई आने के लिए, तो दादी की तबीयत 4 बजे खराब हो गई मद्रास में। सब काम हो गया, हमारा सुबह आने का टाइम है ना, तो सुबह 4 बजे ही तबीयत खराब हो गई। क्या हो गया? कफ जमा हो गया, सांस लेने की तकलीफ हो गई। तुरंत उनको एक बड़े हॉस्पिटल में ले गए, और समाचार आ गया मधुबन में दादी गुलजार की तबीयत खराब है, सब हलचल हो गई एकदम चारों तरफ। तो उन्होंने, डॉक्टरों ने वो कफ निकाला बाहर, और कफ निकाला, फिर उस दिन रात को 9 बजे के फ्लाइट से हम लोग आए, बम्बई आए, फिर दादी की तबीयत वहां पर कुछ दिन रह करके ठीक कराई इस प्रकार से। तो दादियों के साथ में रह करके बात मत नहीं पूछो, वो ऐसे समझती है कि ये सब कुछ कर लेगा। एक बार क्या हुआ कि कॉन्फ्रेंस होने वाली थी मधुबन में कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, तो बड़ी दादी ने, प्रकाशमणि दादी ने मुझे बुलाया, बोले कि 84 की बात है मेरे ख्याल से, मेरे को बुलाया, बोले कि दलाई लामा आने वाला है कॉन्फ्रेंस में, वीआईपी है, गेस्ट है, तो तुम जाओ ये लक्ष्मी नारायण का सोने का बेज बना के लाओ वहां से, उदयपुर से। अब मुझे पता नहीं बेज कहाँ बनता है उदयपुर में क्या है, लेकिन हमको ये सिखाया कि आप डेफिनेशन नहीं दे सकते हो, जो दादियां बोल रही ना उसमें आप डेफिनेशन नहीं दे सकते हो। डेफिनेशन क्या? दादी मुझे नहीं मालूम, नहीं है, मैंने देखा नहीं, ये डेफिनेशन नहीं चाहिए। हाँ जी बोल लो बस, तुम्हारे बैकबोन कौन है बाबा? बैकबोन कौन है, कौन करा रहा है? तुम तो निमित्त मात्र हो। तो दादी ने मेरे को कहा कि तुम ये सोने का बेज बना के उदयपुर से लाओ। हाँ जी। उस समय न तो हमारे पास में कोई गर्म कपड़े इतने होते थे, कुछ दिन ठंडी का समय था, फरवरी, ठंडी बहुत पड़ती थी। गया गवर्नमेंट की बस में बैठ करके गया, उदयपुर में गया, उतर करके चल करके सेंटर पर गया, सेंटर पर बहन जी को बोला, बहन जी ये सोना लेके गया था मैं यहां से, सोना दिया था मेरे को, इसका बेज बना के लाओ। ऐसा ऐसी बात है बहन जी, क्या करना है? फिर एक भाई को मेरे साथ में भेजा, बोले नाथद्वारा में बनता है, तो वहां से बस में बैठ करके नाथद्वारा गया, वहां से बेज बना के लाया और दादी को दिया। तो दादियों की, बाप दादा की, वरिष्ठ भाई बहनों की आप सेवा करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, ब्लेसिंग का पहाड़ लग जाएगा आपके ऊपर। ये नहीं कहो कि मेरे सिर पे हाथ रखो, मेरे को दुआ दे दो, मेरे को ब्लेसिंग दे दो, मांगना नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं, अपने आप दुआ, दुआ ऐसी चीज है वो अपने आप मिलती है। तो ऐसे हम दादी दीदी की, बाप दादा की श्रीमत पर चलते गए, उनकी आज्ञा पालन करते गए, और उस दुआओं का पहाड़ मिलता गया। कल हमको एक सब्जी मिलती थी खाने के लिए, आज थाली में 4-4, 5-5 सब्जी आती थी, तो हमको बाबा याद आता है कि वाह बाबा कमाल है बाबा, थैंक्स बाबा, वो याद आता है। तो बड़ों की दुआ मांगी नहीं जाती है, लेकिन उनकी श्रीमत पर चलो अपने आप दुआ मिलती है। तो दुआओं के पहाड़ दादियों ने, बड़े वरिष्ठ भाई बहनों ने जो भी सेवा की है तन मन धन के द्वारा, उनके पास में ब्लेसिंग मांगने की जरूरत नहीं है, ढेर लगे हुई ब्लेसिंग का। आज इतनी आत्माएं यहां मधुबन में आती है, योग करती है, ज्ञान सुनती है, ब्रह्मा भोजन करती है, सेवा करती है, कितनी दुआएं मिलती है, कितनी दुआएं उनकी मिलती है, कितनी दुआ मिलती, बहुत दुआएं मिलती। तो इस प्रकार से बाप दादा ने सेवा दी, और सेवा कुछ भी सेवा हो, चाहे कोई भी सेवा हो, मैं गुजरात में जाता हूं, साउथ में जाता हूं, सब जगह पर सेंटरों पर जाता हूं, भाई बहनों से मिलता हूं वहां पर, तो मैं एक छोटी सी बात सुनाता हूं। गुजरात अपना पालनपुर है बाजू में, वहां गया मैं, क्लास कराया, वहां बहुत जल्दी क्लास होता है, 6 बजे से क्लास हो जाता है, मैं गया क्लास कराया, सब भाई बहने सब तैयार होकर के आ जाते हैं, और क्लास पूरा हुआ और माताएं उठी और तुरंत झाड़ू पोछा ये वो सब करने लगी माताएं, बोले कि ये हमारी सेवा है ना, हमारे पास में अभी टाइम है। मैंने पूछा उनको, माताएं आप क्यों करती है? बोले कि ये हमारी सेवा है, ये बाबा का घर है, बाबा का मंदिर है, ये किसी की सेवा थोड़ी हम कर रहे हैं, बाबा की कर रहे हैं। इस प्रकार से सारी सेवा 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 से ही भाग्य बनता है। तो मेरे पास में लिटरेचर डिपार्टमेंट में कोई मिलिट्री का बहुत बड़ा ऑफिसर आया, क्योंकि सेवा का बहुत महत्व है, और वो भी स्थूल सेवा का महत्व है, ज्यादा करके बहुत महत्व है, क्योंकि स्थूल सेवा कोई करना नहीं चाहता, और जो करता है दिल से उसका भाग्य बनता है। क्योंकि मेरे को किसी ने कहा कि रमेश भाई, आपके जो डिपार्टमेंट में जो एक सेवाधारी भाई है ना, यंग बहुत बड़ा ऑफिसर है मिलिट्री का, तो ये बात अगर हमारी जानकारी में होती है तो हम उस प्रकार से उनसे सेवा लेते हैं, नहीं तो हम साधारण समझ करके चाहे जो सेवा देंगे उसको तो वो ठीक नहीं है ना। तो मैंने उसको पूछा कि भाई साहब आपका मिलिट्री में क्या रैंक है? तो मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि रैंक नहीं पूछो, अगर मैं रैंक आपको बताऊंगा तो आप मुझे सेवा नहीं देंगे, और सेवा नहीं देंगे तो मेरा भाग्य नहीं बनेगा। मैं सिपाही हूं मिलिट्री में, मेरा कोई रैंक नहीं है। तो इतना महत्व है सेवा का, क्योंकि अगर कोई बड़ी बड़ी डिग्री बताएगा, बहन जी ने मेरे को पूछा कि रमेश भाई आपका बायो डेटा बनाओ, अरे भाई मेरी दादी थी अपने ये जानकी दादी, उसका क्या बायो डेटा था मालूम है? हजारों की सभा में देश में विदेश में मैं 3 क्लास पढ़ी हुई हूं, ये बायो डेटा है उसका, मैं 3 क्लास पढ़ी हुई हूं, और दादी जानकी तो 3 क्लास पढ़ी हुई है, स्कूल गई है, मैं तो स्कूल भी नहीं गया हूं, कुछ पढ़ाई हुआ नहीं हूं। तो पढ़ाई, बाबा ने कहा कि जो पढ़ा हुआ है वो भूल जाओ सब, और जो मैं बोल रहा हूं वो पढ़ाई करो। तो ड्रामा प्लेन अनुसार बाबा के बनने थे, बाबा की सेवा में काम में आने थे, इसलिए आ गए। तो इसे वायो डेटा की कोई बात नहीं है, भी वायो डेटा जो है वो तो स्थूल है, डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, सिल्वर मेडलिस्ट हूं, ये हूं, ये वायो डेटा तो लौकिक है, ये वायो डेटा कौन सा कहां है? अलौकिक वायो डेटा कहां है कि मैं इतने वर्षों से सेवा कर रहा हूं, इतने बाप दादा से मैंने ब्लेसिंग ली है, इतनी मैंने सेवा, ये वायो डेटा तो ये है कि मैं सेवाधारी हूं, अथक सेवाधारी हूं, बाबा की कर वायो डेटा ये है। तो ऐसे सभी भाई बहने चाहे जहां भी रहते हैं, सेंटरों पर रहते हैं, सेंटर बाबा का मंदिर है, भक्ति मार्ग में भी इतने बड़े बड़े करोड़ों करोड़ों रुपए के मंदिर बने हुए, वो तो दान पुण्य से ही बने हुए है ना, तो ये तो हमारा अपना है, ये हमारा अपना है। इस बात को हम जानते हैं कि हम यहां धन देंगे वो धन किस काम में आएगा? ब्रह्मा भोजन बनेगा, मकान बनेगा, भाई बहन आएंगे या मेडिटेशन करेंगे या रहेंगे, इन ये भाई बहनों को जो मधुबन निवासी है उनको वस्त्र मिलेगा, उनको जूता चप्पल मिलेगा, उनको ये सब मिलेगा, इस काम में आएगा, इस बात को हम जानते हैं और धन देते हैं। यहां पर मंदिरों में हम धन देते हैं किस प्रकार से? तिरुपति बालाजी के अंदर कपड़े की पोटली में बांध करके सोना चांदी ऐसे फेंकते हैं, देने की बात नहीं है, ऐसे फेंकते हैं नोटों के बंडल, ऐसे फेंकते हैं और देते हैं, दान कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा दान वहां होता है, सबसे ज्यादा दान मंदिर में होता है। तो हम इन सब बातों को समझ करके और हम अपने बाबा के घर में क्यों न दान पुण्य करें और सेवा करें, जो जिससे भाग्य भी बनेगा और आने वाले भाई बहन उसमें आकर के सुख प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से बाप दादा ने, दादी दीदियों ने, इस परिवार ने, देवी परिवार ने, ईश्वरी परिवार ने खूब अच्छी तरह से पालना की है और पलते जा रहे हैं, अभी भी पलते जा रहे हैं। तो बड़ी दादी हमारा क्लास कराती थी हिस्ट्री हॉल में, दीदी क्लास कराती थी, भट्टी भी कराती थी, जैसे आप भट्टी पाए ना ऐसे हम लोगों को भट्टी दादी दीदी कराती थी। तो एक बार क्या हुआ कि हमारी भट्टी रखी योग भवन में, और मकान नहीं थे उस समय, योग भवन में भट्टी रखी। तो कितने भट्टी रखी? 20 भाइयों की, क्योंकि सब तो काम छोड़ के नहीं जा रहे थे, 3 दिन की भट्टी रखी। हमारे क्लास दादी दीदी मनोहर दादी शांतामणि दादी ये हमारा क्लास कराते थे। तो क्या भट्टी थी हमारी? मौन की भट्टी, मौन एकदम, बोलना नहीं, पांडव भवन में आना नहीं, उधर ही रहना। हमारा खाना पांडव भवन से वहां जाता था योग भवन में, वहां खाना है, सुबह मुरली सुनने के लिए आना है, सिर्फ बात नहीं करना किसी से, और पांडव भवन के अंदर नहीं आना है। तीन दिन तक, तीन दिन पूरा हुआ इस प्रकार से, जो भी उनके क्लासेस चले हमारे, और हमने जो एकाग्रता को मेंटेनेंस किया, योग किया, और आए शाम को क्लास में। अच्छा, दादी दीदी बैठी, सब मधुबन निवासी बैठे, अच्छा जो भट्टी करके आए हैं वो अपना अनुभव सुनाओ, आओ अनुभव सुनाओ, मुख में ताला लगा हुआ, मौन, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। ऐसी अवस्था हो गई, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, चढ़े हुए हैं ऊपर। अरे भाई अभी तुम्हारी भट्टी पूरी हो गई, अब तो आ जाओ सुनाओ यहां। तो एक भाई बड़ी मुश्किल से उठा और बोलना शुरू किया कि दादी दीदी आप लोगों ने तो 14 साल भट्टी किया, हमको कम से कम 14 दिन तो भट्टी करने दो। तो दादी बोलती है कि 3 दिन में तुम्हारी यह हालत है तो 14 दिन में तुम्हारी हालत क्या होगी। 14 दिन अगर मौन भट्टी करेगा तो तुम्हारी हालत क्या होगी। 3 दिन में तो तुम्हारी यह हालत है कि बोलती बंद हो गई तुम्हारी। अरे ये थोड़ी होना चाहिए, ये तो अंडरस्टैंडिंग की बातें हैं सारी। योग क्या है, मौन क्या है, एकाग्रता क्या है, अव्यक्त स्थिति क्या है, उसकी हमको अनुभूति हो हमारे अंदर। ये जरूरी नहीं है कि ऐसे बैठने का योग है वो, नहीं, चलते फिरते खाते पीते काम करते उस याद में रहे, उस स्मृति में रहे, वो योग है, कर्म योग। तो इस प्रकार से बहुत बहुत दादियों की पालना मिली और वो आज हम आपके सामने हैं। ओम शांति।